लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 21 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रेटेली ए सोरेल्ले, बुंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
मर्कोलेडी स्कोर्सो कुन इल रितो पेनिटेंशियाले देले चेनेरी Abbiamo iniziato il cammino della Quaresima.
पिछले बुधवार को राखमलन की पश्चाताप की धम्म विधि के साथ हमने 40 काल की यात्रा शुरू की। आज इस धम्म विधि काल के पहले रविवार को ईश्वर का वचन हमें इन 40 दिनों को फलप्रद तरीके से जीने का रास्ता दिखलाता है, जो पास्का के वार्षिक महोत्सव की ओर ले जाता है। इसी रास्ते पर यीशु चले थे, जिसका संत मार्कुस की महत्वपूर्ण शैली में सुसमाचार यह कहते हुए सारांश प्रस्तुत करता है। अपना उपदेश शुरू करने से पहले वे 40 दिनों तक निर्जन प्रदेश में रहे, जहां शैतान ने उनकी परीक्षा ली। सुसमाचार लेखक रेखांकित करता है कि आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले गया। यर्दन नदी में योहन द्वारा बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद पौत्र आत्मा उन पर उतरा था। वही आत्मा इस समय उन्हें निर्जन प्रदेश में जाने के लिए प्रेरित किया कि वे प्रलोभन देने वाले का सामना करें, शैतान के साथ संघर्ष करें। यीशु का पूरा अस्तित्व ईश्वरीय आत्मा के चिन्ह के अधीन है, जो उन्हें प्रेरित करता, प्रोत्साहित करता और मार्गदर्शन देता है। संत पापा ने निर्जन प्रदेश पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम निर्जन प्रदेश पर चिंतन करें, हम इस वातावरण में थोड़ी देर रुकें जो प्राकृतिक और प्रतीकात्मक है। यह बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। निर्जन प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर मनुष्यों के हृदय में उनसे बातें करते हैं और जहां प्रार्थना का उत्तर मिलता है, अर्थात एकाकी के निर्जन प्रदेश में हृदय दूसरी चीजों से दूर होता और सिर्फ उसी एकाकी में वह ईश्वर के वचन के लिए खुला होता है। किंतु यह परीक्षा और प्रलोभन का भी स्थान है, जहां प्रलोभन देने वाला दुर्बलता एवं मानवीय आवश्यकताओं के अभाव से लाभ उठाते हुए अपनी झूठी बातों से सलाह देता है। दूसरी ओर ईश्वर की आवाज है जो आपको छल के दूसरे रास्ते को दिखलाता है, शैतान के बहकावे के रास्ते को। वास्तव में यीशु का 40 दिनों तक निर्जन प्रदेश में रहना यीशु और शैतान के बीच द्वंद्व युद्ध की शुरुआत है, जो दुख भोग और क्रूस में समाप्त होता है। ख्रिस्त का पूरा मिशन बुराई के विरुद्ध लड़ाई है, जिसको वे कई चीजों में दिखलाते हैं, बीमारी से चंगाई, अवधूत निकालने, पापों को क्षमा देने आदि के द्वारा। पहला चरण जिसमें यीशु दिखलाते हैं कि वे ईश्वर की शक्ति से बोलते और कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कि शैतान अधिक शक्तिशाली है। जब ईश्वर के पुत्र बहिष्कृत, परित्यक्त और अंततः पकड़े जाते एवं मृत्युदंड पाते हैं। वास्तव में मृत्यु अंतिम निर्जन प्रदेश था, जिसको शैतान पर विजय पाने और हमें मुक्ति दिलाने के लिए पार करना था। इस तरह यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा मौत के निर्जन प्रदेश को पार किया। हर साल 40 काल के शुरू में यीशु के निर्जन प्रदेश में प्रलोभन का यह सुसमाचार पाठ हमें स्मरण दिलाता है कि ख्रिस्तों का जीवन प्रभु के पद चिन्हों पर बुरी आत्मा के खिलाफ एक संघर्ष है। यह दिखलाता है कि यीशु ने स्वेच्छा से प्रलोभन देने वाले का सामना किया और उसे हराया, एवं साथ ही हमें यह भी याद दिलाता है कि शैतान को अपने लालच के द्वारा हमें प्रलोभन देने की संभावना दी गई है। हमें इस धूत शत्रु की उपस्थिति से सावधान रहना है, जो हमारे अनंत दंड, हमारी असफलता की खोज करता है। अतः हमें अपने आप को उससे बचाने एवं संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। ईश्वर की कृपा, विश्वास, प्रार्थना एवं प्रायश्चित के द्वारा शत्रु पर हमारी विजय का आश्वासन देती है। संत पापा ने कहा, किंतु मैं एक चीज को रेखांकित करना चाहता हूँ। प्रलोभन में यीशु शैतान के साथ कभी वार्तालाप नहीं करते, कभी नहीं। अपने जीवन में यीशु ने शैतान के साथ कभी वार्तालाप नहीं किया। उन्होंने या तो अवधूतग्रस्त से उसे निकाल दिया अथवा दंड दिया या उसके द्वेष को प्रकट किया, किंतु वार्तालाप कभी नहीं किया। निर्जन प्रदेश में लगता है कि वे उससे वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि शैतान ने 3 प्रस्ताव रखे और यीशु ने उनका उत्तर दिया, लेकिन यीशु ने अपने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उन्होंने ईश्वर के वचनों, धर्मग्रंथ के 3 कदमों से जवाब दिया। संत पापा ने कहा कि यह हम सभी के लिए है। जब प्रलोभक निकट आता है, वह प्रलोभन देना शुरू करता है, इसको सोचो, इसको करो इत्यादि। इसके साथ बातचीत करने में प्रलोभन है, जैसा कि हेवा ने किया। हेवा ने कहा, नहीं खा सकते क्योंकि हमें, इस तरह वह उसके साथ बातचीत करने लगी। यदि हम शैतान के साथ वार्तालाप करना शुरू करेंगे तो हार जाएंगे। संत पापा ने कहा कि हम इस बात को अपने मन और हृदय में रखें, शैतान के साथ कभी वार्तालाप नहीं करना है। उससे वार्तालाप संभव नहीं है, केवल ईश्वर के वचन से वार्तालाप हो सकता है। 40 काल के समय में पवित्र आत्मा हमें भी यीशु के समान प्रेरित करता और निर्जन प्रदेश में प्रवेश कराता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि अस्तित्वगत आयाम है, जहां हम शांत रह सकते और ईश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, ताकि हम में एक सच्चा मन परिवर्तन हो। संत पापा ने कहा कि हम निर्जन प्रदेश से ना डरें, प्रार्थना, मौन और अपने अंदर प्रवेश करने के लिए अधिक समय निकालें। हम भयभीत ना हों। हम बपतिस्मा में हमारी प्रतिज्ञा को नवीकृत करते हुए ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान और उसके सभी कृत्यों और उसके छल का त्याग करने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान वही है, सावधान रहें, उसके साथ कभी वार्तालाप ना करें। तब संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा, हम अपने आप को कुंवारी मरियम की ममता में मध्यस्थता को समर्पित करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया तथा उन्हें दिव्य करुणा के लिए अपना हृदय खोलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी रोम वासियों एवं तीर्थयात्रियों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, खासकर मैं पोलैंड के विश्वासियों का अभिवादन करता हूँ। संत पापा ने पोलैंड में प्लोक तीर्थस्थल की याद की, जहां आज से 90 वर्षों पहले प्रभु यीशु ने संत फाउस्टिना को दर्शन दिए थे तथा उन्हें दिव्य करुणा का विशेष संदेश दिया था। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के समय में यह संदेश दुनिया भर में फैला, और यह कोई दूसरा संदेश नहीं बल्कि यीशु ख्रिस्त के मरने और जी उठने का सुसमाचार है, जो पिता की करुणा प्रकट करता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा, हम अपना हृदय खोलें यह कहते हुए कि यीशु, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। इसके बाद संत पापा ने रोम में फ्योरेंटिन स्थित संत योहन पल्ली के तालिथा कुम दल के युवाओं और वयस्कों का अभिवादन किया। उन्होंने उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें अच्छी योजनाओं में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया, और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
या तुति आउगुरो una bella domenica, bella al sole.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने पोलैंड की संत फाउस्टिना कोवाल्स्का को यीशु के दर्शन की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोलाक के धर्माध्यक्ष को पत्र लिखकर बधाई दी। संत पापा फ्रांसिस ने पोलाक के धर्माध्यक्ष पियोट लिबरा को संबोधित करते हुए अपने पत्र में पोलाक धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को अभिवादन किया। 22 फरवरी 1931 को प्रभु येसु ने संत फाउस्टिना कोवाल्स्का को करुणा का विशेष संदेश सौंपते हुए खुद को पहली बार प्रकट किया था। संत पापा ने इस पहले रहस्योद्घाटन की 90वीं वर्षगांठ के समारोह में आध्यात्मिक रूप से दिव्य करुणा के तीर्थालय में मीडिया के माध्यम से प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। संत पापा ने उन शब्दों को याद किया जिन्हें संत फाउस्टिना ने तब सुने थे। आप जिस छवि को देख रही हैं, उसका चित्र बनावें और उसके नीचे लिखें, येसु मुझे आप पर भरोसा है, मैं चाहता हूँ कि यह छवि पहले आपके प्रार्थनालय में और फिर दुनिया भर में वंदना की जाए। दयालु प्रभु की भक्ति पूरे विश्व में फैल गई है। संत पापा ने कहा, दयालु प्रभु की भक्ति अब पूरे विश्व में फैल गई है और यह विश्वासियों के दिलों में जीवित है। इस अवसर पर संत पापा ने संत फाउस्टिना की डायरी में लिखे प्रभु के दूसरे शब्दों को भी याद किया, मानवता को शांति का पता नहीं चलेगा जब तक कि वह मेरी दया के स्रोत की ओर नहीं मुड़ती। संत पापा फ्रांसिस ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आइए हम स्रोत की ओर मुड़े, हम मसीह से दया का वरदान मांगे, वे हमें अपनी बाहों में ले लें, हम प्रभु के पास लौटने का साहस करते हैं। संस्कारों में हम उनके प्रेम और दया को ग्रहण करते हैं। जब हम उनकी निकटता और कोमलता को महसूस करते हैं तो हम भी दया, धैर्य, क्षमा और प्रेम के लिए अधिक सक्षम होते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने करुणा के प्रेरित संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को भी याद किया जिनकी इच्छा थी कि ईश्वरीय करुणा का संदेश पूरे विश्व में फैल जाए। और रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने दो ट्वीट किया। पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, आज मेरे विचार पोलैंड के उस तीर्थालय में जाते हैं जहां 90 साल पहले प्रभु येसु ने संत फाउस्टिना कोवाल्स्का को ईश्वरीय करुणा का विशेष संदेश सौंपते हुए खुद को प्रकट किया था। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा,
इस चालीसा काल में पवित्र आत्मा यीशु की तरह हमें भी रेगिस्तान में चलाती है। यह एक भौतिक स्थान नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम है जिसमें हम मौन रह सकते हैं और ईश्वर के वचन को सुन सकते हैं ताकि हमारे भीतर एक सच्चा हृदय परिवर्तन प्रभावी हो सके। और संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रधान पुरोहित कार्डिनल एंजेलो कोमास्त्री के इस्तीफे को स्वीकार किया और उनके स्थान पर उन्होंने कार्डिनल माउरो गाम्बेत्ती को वाटिकन सिटी के लिए विकर जनरल के रूप में नामित किया। वे संत पेत्रुस महागिरजा घर के नए प्रधान याजक और संत पेत्रुस महागिरजा घर की रखरखाव समिति के अध्यक्ष हैं। कार्डिनल गाम्बेत्ती ने 2013 से 2020 तक असीसी में संत फ्रांसिस समुदाय के सुपीरियर जनरल के रूप में अपनी सेवा दी और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 20 फरवरी को कार्डिनल रॉबर्ट सारा के इस्तीफे को स्वीकार किया। कार्डिनल रॉबर्ट सारा पिछले साल 15 जून को 75 साल के हो गए। गिनी वासी कार्डिनल रॉबर्ट सारा का 20 जुलाई 1969 को पुरोहिताभिषेक हुआ था। 34 साल की उम्र में 1979 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें क्रॉनक्री के महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। 2001 में वे लोक धर्मियों की प्रेरिताई हेतु बने परम धर्मपीठीय धर्म संघ के सचिव बने और 2010 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें पोंटिफिकल काउंसिल कोर यूनुम के अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें तुस्कोलाना के संत जोवानी बोस्को के डाइकोनिया का कार्डिनल बनाया। 23 नवंबर 2014 को संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें दिव्य उपासना और संस्कार संबंधी परम धर्मपीठीय धर्म संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने मार्च 2013 के निर्वाचिका सभा सम्मेलन में भाग लिया जिसमें संत पापा फ्रांसिस निर्वाचित किए गए। एक हंगेरियन लेखिका एडिथ ब्रूक जो अब लगभग 90 वर्ष की है इटली में कई वर्षों से रह रही है। जनवरी में ओसर्वातोरे रोमानो ने होलोकोस्ट मेमोरियल दिवस के अवसर पर उनका साक्षात्कार लिया। उनके गवाह से प्रभावित संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को रोम में उनके घर पर मिलने का फैसला किया। संत पापा शनिवार दोपहर को वाटिकन से निकले और रोम स्थित हंगरी की यहूदी महिला एडिथ ब्रूक के घर पहुंचे। संत पापा ने उनसे मुलाकात की और कहा, मैं आपकी गवाही के लिए धन्यवाद करने और नाजी साम्राज्य के पागलपन से शहीद हुए लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ और ईमानदारी के साथ मैं उन शब्दों को दोहराता हूँ जो मैंने अपने दिल से याद वाशेम में कहा था और यह कि मैं हर व्यक्ति के सामने दोहराता हूँ जो आप जैसे व्यक्ति को इस वजह से इतना नुकसान हुआ है। मैं मानवता के नाम पर याचना करता हूँ, हे ईश्वर क्षमा करें। संत पापा फ्रांसिस के साथ ओसर्वातोरे रोमानो के निदेशक एंड्रिया मोंडा भी उपस्थित थे जिन्होंने 26 जनवरी को एडिथ ब्रूक द्वारा फ्रांसेस्का रोमाना डे एंजेलिस को दिए हृदय स्पर्शी साक्षात्कार को प्रकाशित किया था। उधर सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि देश में संघर्ष द्वारा किसी भी सीरियाई परिवार को बिखरने से छोड़ा नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त जांचकर्ताओं ने हजारों साक्षात्कार और कथित व्यक्तिगत अपराधियों की जानकारी के आधार पर खुलासा किया कि वर्तमान में सीरिया के बाहर 60 से अधिक अलग अलग जांच चल रही हैं। जांच आयोग के अध्यक्ष पाउलो पिनहेरो ने सीरिया में नए सिरे से संघर्ष विराम की मांग को नवीनीकृत किया जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत के लिए समर्थन का प्रयास करने का आग्रह किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।